महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग भगवान जिनेन्द्र की भक्ति का स्वरूप समझ रहे हैं और साथ ही हमारी कोशिश ये भी है कि हम उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, भावना भाएं। जो भी सीखा जाए वो यदि हम अपने आचरण में उतार लें तो वो जो सीखा हुआ है वो सार्थक हो जाता है। शिक्षा के बारे में विनोबा भावे का कहना था कि हम पढ़कर के सीखते हैं वह अधूरा है, हम जो करके सीखते हैं वो पूरा है। हम भगवान की पूजा घर बैठ करके पढ़ लें या कि मंदिर में भगवान के सामने आकर उनकी पूजा करें, तो दोनों में अंतर कुछ समझ में आता है कि नहीं? आता तो है, क्योंकि घर में वैसा वातावरण नहीं है, वहां वीतरागता के स्मरण का उपाय ही नहीं है। वहां हम कितनी भी बढ़िया से पूजा पढ़ लेवें, लेकिन वह वीतराग छवि बहुत प्रयत्न करने पर हमारे स्मरण में आएगी। और जहां मंदिर में भगवान की वीतराग छवि सम्मुख है और वहां बैठ के हम भगवान जिनेन्द्र की पूजा भक्ति करें तो वहां हमारे परिणामों में और वीतरागता आसानी से आएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर भगवान की पूजा करने के बाद उनकी वह वीतराग छवि हमेशा के लिए हमारे मन में बस जाए तो फिर हम जहां भी रहें हमारे कार्य में वह जो भगवान के गुण हैं, भगवान की जो वीतरागता है, वो उनका जो स्वरूप है, वो हमेशा बने रहने से हमारा जीवन हम बुराइयों से बचाकर और अच्छाइयों की तरफ आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ जहां हमें वाही में भगवान की वीतराग छवि का दर्शन करना जरूरी है, वहीं हमें भगवान की उस वीतराग छवि से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी वीतरागता लानी चाहिए। ये अपन ने पिछले दिनों इस बात पर विचार किया था, वादिराज महाराज किस तरह से भक्ति करके और अपने जीवन को निर्मल बनाते हैं, उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी उनके जैसे ही भक्ति कर सकें। एक ही भाव स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध नहीं है भक्तांबर स्तोत्र की तरह, लेकिन वह भी भगवान जिनेन्द्र की स्तुति है, उसके उसको हम पढ़ें और उसको हम सीखें तो लगेगा कि हाँ सचमुच भक्ति इस तरह से की जानी चाहिए जिससे कि हमारे आत्मा का उत्थान हो। अभी तो हम भक्ति जो करते हैं वो हमारे बाह्य सुख सुविधा के निमित्त से कई बार करते हैं, लेकिन अगर उसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें कि हम अपने आत्म संतोष आत्म तृप्ति कहें या कि आत्म सुख के लिए या अपने आत्म विकास के लिए अपने उस वीतराग स्वरूप को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है, ऊंचा उठा सकती है। भगवान जिनेन्द्र की भक्ति में दो बातें बहुत अनिवार्य हैं, हमारी जितनी उनके गुणों के प्रति रुचि होगी, जितनी हमारी उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना प्रबल होगी और जितनी हमारी तल्लीनता होगी, ये दोनों चीजें अगर सज जाती हैं तो हमें उस भक्ति के द्वारा बहुत शीघ्रता से लाभ मिलता है। एक तरफ हमारी भावना है कि हम भगवान के जैसे गुणों को प्राप्त करें, बहुत प्रबल भावना है, इतनी प्रबल भावना है जैसे कि किसी की नाक थोड़ी देर को दबा दी जावे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता, तो फिर एक मिनट दबाने के बाद छोड़ दी जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हें अभी इस समय किस चीज की बहुत इच्छा थी, तो वो कहेगा कि बस एक थोड़ी सी सांस लेने का समय मिल जाए, इतनी इच्छा थी और दुनिया की चीजों की कहते और किसी की नहीं थी। अब बताइएगा, वैसे रोज सांस लेते हैं लेकिन कभी भी ये ध्यान नहीं रहता कि सांस लेना इतना कीमती है, लेकिन जिस समय सांस अवरुद्ध हो जाए उस समय मालूम पड़ता है कि कितनी कीमती है। ऐसे ही हमारे मन में जब बहुत प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो कि अब तो संसार के दुख जो है वो हमसे सही नहीं जाते, हमें तो जैसे भगवान ने उस सुख को प्राप्त किया है, आत्म सुख को, उसको पाने की ललक हमारे भीतर उत्पन्न हो गई, तो एक प्रबल इच्छा हमारे भीतर, वीतरागता के दर्शन करने से, वीतराग भगवान की स्तुति करने से भावना प्रबल होती है, और फिर एकाग्रता उसके साथ में अगर बनी रहे तो दोनों चीजें मिल करके और बहुत बड़ा हमारे भीतर परिवर्तन कर सकती हैं। आचार्य वादिराज महाराज तो ये कह रहे हैं कि जिन क्षणों में मैं भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूं उन क्षणों में तो मैं देह का मुझे भान ही नहीं रहा। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख त्वाम अनुध्यायतो मे त्वये वाहम सहिति मतिर उत्पद्यते निर्विकल्प मिथ्यै वेयम् तदपि तनुते तृप्तिम अभ्रेश रूपाम दोषात्मानो बहुमत फलास्तत् प्रसादात् भवन्ति। भगवान प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख ऐसे आप जिन्होंने की अपने उस आत्म सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आपके दर्शन करने से, आपकी स्तुति वंदना और भक्ति करने से ऐसा मन में भाव, ऐसी मन में बुद्धि उत्पन्न होती है कि आप समान ही मैं भी हूं। बताइए, इतनी तल्लीनता हो गई कि जैसे भगवान में ही हम समा गए, या कि मानो भगवान ही हमारे भीतर समा गए। यह जो प्रक्रिया है वो बहुत स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आकर के हमारे हृदय में बैठ गए या कि हम जाकर के भगवान में समा गए, ये बहुत स्थूल सा लगता है, पर देखा जाए तो भगवान की जो वीतरागता है वो जिन क्षणों में हमारे भीतर आ जाती है तो समझो कि हम भगवान में समा गए या कि भगवान हमारे भीतर आ गए। वीतरागता आ गई तो भगवान आ गए। इसलिए उस भक्ति के समय कह रहे हैं कि ऐसा जान पड़ रहा है, इतनी तल्लीनता हो गई भगवान की, मुझे लगता है कि जैसे आप हैं सो ही मैं हूं। जैसे कि बूंद समुद्र में गिरे तो बूंद का क्या अस्तित्व रहता है, देखा जाए तो बूंद खो गई ऐसा मालूम पड़ता, लेकिन विचार करें तो वो समुद्र हो गई बूंद, अब वो समुद्र का ही एक हिस्सा हो गया। ऐसे ही हम अपने बाह्य राग द्वेष मोह इत्यादि को जिन क्षणों में छोड़ देते हैं उन क्षणों में हम अपने स्वरूप में समा जाते हैं। वो जो स्वरूप में समाना है वही तो भगवान में समाना है। ऐसी एकाग्रता जो है भगवान की भक्ति के समय आ जावे, थोड़ी देर को आती है, आती तो होगी, जब बहुत तल्लीनता हो जाती है तब ऐसा ही लगने लगता कि अरे यही तो मेरा भी स्वरूप था जैसा भगवान का है, मैं कहां इस संसार के प्रपंच में पड़ करके और अपने हाथ से दुख उठा रहा हूं, ऐसा मन में भाव आने लगता। लेकिन फिर कह रहे कि मिथ्यै वेयम्, हालांकि भगवान आपसे काके में झूठी है जवाब बिल्कुल, अरे कौन हम आपके जैसे हो गए, मगर लगने लगता है आपके दर्शन करने से ऐसा। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है तो मैं अपने उस वीतराग स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं। ये मेरे भीतर आत्मविश्वास जागृत होने से बड़ी तृप्ति। मिथ्यै वेयम् तदपि तनुते तृप्तिम अभ्रेश रूपाम, लेकिन यह जो विचार मेरे भीतर आता है कि मैं भी आपके समान ही हूं, मेरे भीतर भी वैसी ही शक्ति छिपी हुई है, ये मात्र विचार भी मुझे बड़ी तृप्ति देता है। पर बात झूठी है, दोनों चीजें कह रहे हैं। दृष्टिकोण देखिएगा, शक्ति की अपेक्षा से निश्चय नहीं की कथनी क्या कहेगी कि मैं तो भगवान के जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूं, लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो झूठी बात है। अभी तो मैं भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त ही नहीं हुआ, अभी तो मैं राग द्वेष और मोह से ग्रसित हूं। एक मूर्ख व्यक्ति था गांव में, तो सब उसको मूर्ख ही कहते थे। अब उसको ये लगता था कि मैं तो मूर्ख हूं नहीं, सब ऐसे ही कहते हैं मूर्ख, एक दूसरे से सुन सुन के कहते हुए मूर्ख, मैं थोड़ी मूर्ख हूं। वो अपने होने मानता था मूर्ख, तो उसने सोचा कि इस गांव में तो सबको आदत पड़ गई हमें मूर्ख के भी, कि हम तो दूसरे गांव में चले। अब भैया ठीक है चले भैया दूसरे गांव की तरफ चले। अब बीच रास्ता में और एक कुआ दिखा, तो हाथ मुंह धो करके और थोड़ा विश्राम कर ले ऐसा सोच करके वो उसमें उस पर बैठ गया। सो वो कुएं की जो पाट है उस पाट पे बैठा और पांव लटका लिए उसने भीतर की तरफ। अब एक आदमी वहां से निकला तो वो तो दूसरे गांव का था, वो वहां से निकला तो पानी पीने के लिए आया तो पहले नंबर पानी पीने से पहले कहता है कि कैसे मूर्ख हो तुम। तो वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा तुमसे कौन कई कहने तुमसे जा बता पहले, तुम वो गांव से तो आए नहीं है जब जहाँ की हम हैं, तो तुम्हें क्या बताई कौन ने कि हम मूर्ख हैं। कहते भैया कोहने नहीं बताई, तुम्हारे लक्षण बता रहे कि तुम मूर्ख हो, पांव लटकाए हो मैं, हमारा व्यवहार तो ये बता रहा है कि अभी मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन क्या बात है, बिल्ली जो है उसका घर बन गया वहां पर नीचे। तो लेकिन मेरे व्यवहार से तो भले ही यह बात झूठी है, पर अंतरंग में जब मैं झांक करके देखता हूं तो मैं भी आपके जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूं। दोनों ही बातें हैं, क्या बात है। तो इस तरह अगर अपन विचार करें तो जब हम भगवान की भक्ति करें तो क्या देखें, हम अपने स्वरूप की तरफ देखें, और अपने स्वरूप का स्मरण करने से हमारे मन में बड़ा संतोष मिलता है। जैसे अपनी भूली हुई चीज को मिल जाने पर हमें सुख होता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने पर हमें अपने भूले हुए स्वरूप का स्मरण हो जाने पर सुख होना चाहिए। लेकिन हमें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि हम वैसे ही हो गए। हमें बाह्य में जो व्यवहार है उस व्यवहार की अपेक्षा से तो देखा जाए तो अभी मुझे अपने राग द्वेष मोह को जीतना है। भगवान तो अपने राग द्वेष मोह को जीत चुके हैं, बस इतना जरूर है कि मुझे भी अपने राग द्वेष मोह को जीतना है। ये विचार भगवान के भक्ति से, उनके स्मरण से मेरे भीतर उत्पन्न हो गया है। और फिर कहते कि तृप्तिम भ्रेश रूपाम, सो ठीक है भगवान, दोषात मानो बहुमत फलास्तत् प्रसादात भवन्ति। आपकी प्रशंसा तो इसी बात में है कि कोई कितना भी पाप से लिप्त होवे, कितना भी पतित होवे, लेकिन आपके चरण सानिध्य में आकर के उसे पावन होने का अवसर मिल जाता है। उसको अपनी पावनता का स्मरण आ जाने पर वो अपनी मलिनताओं को हटाने लगता है और अपने आप ही पावन हो जाता है। आप थोड़ा उसे पावन करते हैं, वो तो आपके चरण सानिध्य में अपने आप ही अपने पतित होने के कारणों को कोई छोड़ देवे तो पावन होने में देर कितनी लगनी है। एक तरफ मेरा स्वभाव अत्यंत निर्मल है ऐसा आप प्रेरणा देते हैं, और दूसरी तरफ जब मेरा स्वभाव निर्मलता का है तो मैं क्यों जो है मलिनताओं को अंगीकार करता हूं। मैं छोड़ दूं मलिनताओं को तो मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर लूंगा। ये बात जो है आपकी भक्ति से ही मुझे अत्यंत स्पष्ट जान पड़ती है। अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अपनी निर्मलता और अपनी मलिनताओं को, दोनों को हम स्पष्ट रूप से देखें, और जितना बने उतना हम बाहर संसार में आकर व्यवहार में आकर के भी अपनी निर्मलता को ही बढ़ाने के लिए उद्यम करें। क्योंकि संसार में तो जीव दुखी है, किस बात से दुखी है, अपने ही राग द्वेष और मोह से दुखी है, और कोई उसका उसकी वजह नहीं, कोई उसको दुखी करने वाला नहीं है संसार में। ये चीज हमें भगवान की भक्ति से स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि निर्मलता तो मेरा स्वभाव है, फिर मैं जो दुख पा रहा हूँ वो काहे से पा रहा हूँ, मैं अपनी इस निर्मलता के स्वभाव को भूलने से दुख पा रहा हूँ, ऐसा उसके भीतर में विचार आवे। अपन लोगों के अंदर ये मलिनता कैसे आती है, अपने ही विचारों से आती है। तो एक इसके लिए घटना मैं पढ़ रहा था, वैसे क्या पता मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई, अब आपको बताता हूँ, याद आ जाएगी शायद। कि एक व्यक्ति ने बहुत भगवान की पूजा भक्ति करी, तो भगवान कहते कि देवता जो थे वो प्रसन्न हो गए, उनने कहा भैया वरदान मांगो। ऐसे जो देव होते हैं स्वर्ग के, उनके अंदर शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, श्राप देने की अनुग्रह करने की शक्ति होती है। लेकिन जी ध्यान रखना कि पाप को दय होवे तो वरदान ने फल है, और पुण्य को दय होवे तो श्राप कछु बिगाड़ने ले, जा भी ध्यान रखी। हाँ, नहीं तो जा सोचो कि कू के करे से कछु हो जाएगा, हमारे अपने पुण्य पाप से होता है। लेकिन अब ठीक है, कथा में प्रसिद्ध है कि भाई उनने कहा वरदान मांगो, तो इसने सोचा कि भाई क्या मांगे, हमेशा को बार बार को झगड़ा काय को, ये कई बार मांग लो कि हम जो कछु मांगे सब मिल जाए, लियो। तो ऐसा वरदान मांग लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, तो हम तुम्हें दे देंगे कि तुम जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिलेगा। उन्होंने कहा जो और मुश्किल भाई, अब बताओ आप। अपने को अपनी चीज मिल जावे इसका सुख नहीं है संसार में, जीव को इस बात का दुख है कि दूसरे को क्यों मिले। अब उसने सोचा कि देखें क्या होता है, तो उसने एक महल मांगा तो देखा तो पड़ोसी के दो महल हो गए, उसने अपना माथा पीट लिया कि जो तो होगा हमने तो अच्छो कर वेगा। अच्छा जबकि हुआ कुछ नहीं उसका, उसको जो एक महल मांगा था सो मिल गया, लेकिन पड़ोसी के भी दो महल बन गए हमारे एक मांगे से। तो उसने वकीलों की सलाह ली, हाँ फिर अब क्या करें, ऐसे में तो जो है सलाह लेना पड़ेगी। तो वकीलों ने सलाह दी कि देखो ऐसा करो, तुम तो अब की बार मांगो कि एक कुआं हमारे घर के सामने खुद जाए। तो उसने कहा इससे क्या होगा, कहले मांगो तो मांग लिया उसने कि एक कुआं खुद जाए। तो देखा पड़ोसी के दो खुद गए, तो उसने कहा अब क्या करें, कहते तुम जी मांगो कि हमारी एक फूट जाए आंख। अब समझ में आ गया, अब इसमें प्रसन्नता है। जे जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, जे प्रवृत्ति हमारे अपने, ये तो मोटा उदाहरण है भैया, मनो करत अपन ऐसा ही है, ऐसो नहीं करत जैसो हमने कही है, मगर इसी रूप में करते किसी ना किसी रूप में। दूसरे के अहित का जो विचार है वो मेरे हित में बाधक है, वही मेरी मलिनता का कारण है। ये विचार कभी नहीं आता संसार में, अगर देखा जाए तो जीव जो है यही अपने दुख का उपाय करता रहता, अपनी अज्ञानता से, अपने राग द्वेष और मोह की वजह से, इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, कहते जरूर हैं लेकिन हमारे मन में यही विचार बने रहते हैं सुबह से शाम तक। और अगर ये आ जावे कि सब जीव अपने आत्मा का विकास करें, मैं भी अपने आत्मा का उत्थान करूं, ऐसा विचार निरंतर ना रहे तो भक्ति सार्थक हो जाए भैया, और क्या चीज है। अपनी भक्ति उतनी देर के लिए सार्थक हो पाती जितनी देर भगवान के चरणों में बैठते हैं, और अगर वहां से निकल कर भी ये विचार बना रहे कि नहीं मेरे द्वारा किसी जीव का अहित ना हो, सब जीव अपना हित करें मैं भी अपना हित करूं, इस तरह से भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। आगे और वादिराज महाराज कह रहे कि मिथ्ये वेयम तदपि तनुते, नहीं मिथ्या वादम मलमपनुदन सप्त भंगी तरंगैर बागम बोधिर भुवन मखलम देव परियेति अस्ते तस्यावृत्तिम सपति विबुधास चेत सही वाचलेन व्यातनवंता सुजरमम्रता सेवया तृप्नुवंती। भगवान एक तरफ तो आपके दर्शन और दूसरी तरफ आपकी वाणी का श्रवण, दोनों चीजें हो रही हैं। समोशरण में अगर कोई बैठा होवे तो उसके लिए दोनों सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अपन को इसमें से एक सौभाग्य प्राप्त है, अपन चाहे तो दूसरा भी प्राप्त कर सकते। हाँ, भगवान के उस वीतराग स्वरूप से मिलने वाला संदेश भी ग्रहण कर सकते, अकेले दर्शन नहीं उससे मिलने वाला संदेश भी सुन सकते इन कानों के द्वारा। वहां समोशरण में बैठी हो तो एक तरफ वीतरागता दिख रही और भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, उसमें वचन उनके तत्व का प्ररूपण करने वाले वचन है, तो कह रहे कि वह जो वचन है वो तो समुद्र के समान है। तो वचन रूपी तो हो गया समुद्र और उसमें लहरें उठ रही, तो वो है सात्वाद रूपी लहरें। और समुद्र की विशेषता है कि उसमें कितनी भी आप कचरा फेंक दो, कितनी भी मलिनता उसमें चली जावे, लेकिन समुद्र क्षण भर में अपनी लहरों के माध्यम से वो सारे कचरे को उठा करके बाहर किनारे पर फेंक देता है। सो ऐसा ही कह रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है, साधवाद रूपी लहरें हैं, वे जितने भी मिथ्या मान्यताएं रूपी कचरा है, मलिनताएं हैं, उसको हटाने वाले। लोगों के भीतर ये जो भ्रांति हो गई है कि तपस्या करने वाले ये जो तपस्वी हैं, साधु जन हैं, इनके तो देह इत्यादि अत्यंत मलिन होती है, जैसा कि अभी सेठ कह के गए हैं। सो ऐसा जो मिथ्या फैल रहा है वाद, मिथ्या जो बातें फैल रही हैं, वे सब आपके वचन के माध्यम से अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसा वादिराज महाराज भक्ति करते हुए विचार कर रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है मानो, और उसमें साधवाद रूपी लहरें उठने से ये जो भ्रांतियां हैं नाना प्रकार की हमारे मन में 363 विभिन्न मान्यताएं हैं जो संसार में भटकाने वाली हैं, वे सब हट जाती हैं। इतना ही नहीं, एक कथा प्रसिद्ध है संसार में कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया था देवताओं ने, जब सुरासुर की लड़ाई हुई थी। अब जब सुरासुर की भईती किने भईती मनो अपने भीतर तो रोज चलते रहते, अच्छाई और बुराई की लड़ाई रोज चलती रहती है। अब देखो उस अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है उसके उससे जीतने के लिए क्या करें, तो उससे जीतने का उपाय कह रहे कि उस अगर वचन रूपी समुद्र का मंथन करे कोई, मंथन करे अर्थात अभ्यास करे, अब उसमें मथानी डाल करके सुमेरु पर्वत को मथानी बना लेवे और फिर उसको डाले, ये तो बहुत स्थूल सी बातें हैं। वास्तव में क्या कहना चाह रहे कि उस वचन रूपी समुद्र का कोई मंथन करे अर्थात उसका अभ्यास करे तो क्या प्राप्त होगा, उससे अमृत प्राप्त होगा अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। पीयूष है विषय सौख विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। ये आचार्य महाराज की चार पंक्तियां हैं कि ज्ञान वास्तव में कैसा हो या भगवान की वाणी कैसी है, कहते पीयूष के समान है, अमृत के समान है, जिसके पीने से हम जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के दर्शन कर रहे और उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे, उनने हमारे लिए जो वाणी कही है, जो वचन कर कह रहे हैं, उसका अभ्यास करें। उन आत्म तत्व इत्यादि जो सात तत्व कहे हैं, आत्म तत्व को आदि लेकर के उन सात प्रयोजन भूत तत्वों का उस समय पर हम विस्मरण कर रहे हैं कि हाँ वास्तव में मेरे आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है जैसा भगवान का है, तो वह विचार भी हमारे लिए निर्मल बनाने में कारण बनता है। भगवान की वाणी के अनुसार अगर अपना जीवन बना ले में तो क्या क्या बात नहीं है भैया, भगवान के दर्शन करके उनके जैसे बनने की प्रेरणा लेवे और उनकी वाणी से और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम चाहें तो उनके जैसे बन सकते हैं, कितना आसान उपाय। एक तरफ दर्शन है समूचरण में, इसीलिए बहुत आसानी से जीव अपना कल्याण कर लेते कि एक तरफ तो स्वरूप दिखाई पड़ रहा, दूसरी तरफ उपदेश मिल रहा है कि करो तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें आज इसीलिए अपन मंदिर को समोचरण जैसा मान के प्रवेश करते हैं कि हाँ वही साक्षात मानो वेदी पर भगवान बैठे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, हम उनके गुणगान कर रहे हैं। पूजाएं भी हमने ऐसी बनाई जिनमें कि भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश अपन स्वयं बोलते हैं कि फिर मैंने दीपक को जो संसार में है उसी को ही रोशनी मान ली और अपने केवल ज्ञान रूपी दीपक को मुझे प्राप्त करना है। ये दीप तो बहुत थोड़ी देर में बुझ जाएगा, मैं तो प्राप्त करना चाहता हूँ केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी। ऐसी पूजाओं में अपन क्यों पढ़ते हैं, इसी दृष्टि से पढ़ते कि उपदेश भी साथ में मिल रहा और वितराग भगवान का दर्शन भी साथ में हो रहा, दोनों चीजें। और उपदेश तो इतना ही है भैया भगवान का कि अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र के हित का हमारे भीतर में विचार हो, इतना ही भगवान का उपदेश है। सब जीवों के कल्याण की जो भावना है वास्तव में वही सब धर्मों का उपदेश है। एक छोटी सी घटना सुना करके यहीं तक अपनी बात रखता हूं। क्या हुआ, एक बार छुट्टी का दिन था, अब बच्चों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो दो बच्चे थे उनकी अपनी अपनी साइकिल से वो चले जा रहे थे, उनने सोचा अपन दौड़ते हैं, साइकिल की दौड़ करते हैं, जो जीत जाएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है भाई। अब दोनों ने अपनी तेजी से साइकिल चलाई, उतने में ही बहुत जोर से कोई बच्चों की माँ ने आवाज दी कि अरे बच्चों देखो तो तुम लोग जरा जल्दी से साइकिल दौड़ा करके उसको बचा लो। क्या हुआ था कि छोटा सा बच्चा जैसे 2-3 साल के बच्चे को वो जो बच्चों की गाड़ी नहीं होती जिसमें बिठा लेते हैं और फिर बाद में माँ या कि भाई कोई भी उसको पीछे से धक्का देके चलाते चले जाते हैं, तो वो एक और छोटा सा तो बच्चा और उसकी गाड़ी को चलाने वाला भी एक छोटा सा बच्चा, अब वो जब ढलान आई तो उससे गाड़ी नहीं संभली, उसके हाथ से गाड़ी छूट गई और गाड़ी तो उस बच्चे को लेकर के ढलान में और नीचे चली जा रही है। अब माँ चिल्ला रही है कि बच्चों देखो तुम अपनी साइकिल से और जाकर के उस बच्चे को चाहो तो बचा सकते हो। उसमें से एक ने क्या सोचा, अरे वाह हम हार जाएंगे, अगर हम इसको बचाने में लग जाएंगे तो हमें जहां तक पहुंचना है दौड़ में। भैया कहानी तो कहानी है, सबके समझ में आ गई हुई है, हैं? और दूसरे ने क्या सोचा, लेकिन अपन भी तो संसार के 5 इंद्रिय और मन के विषयों में दौड़ रहे और दूसरे को बचावे के लाने कहूं कछु करत हैं, दूसरे के हित की लाने, अपने हित की लाने करते कुछ कभी के नहीं, कि उसी में लगे रहते गोरख धंधे में सुबह से शाम तक। जी है वो तो कहानी, तो कहानी हूं मैं तो, अच्छा लगे क्या बहुत अच्छो करो, वो लड़का ने पीठ थपथपा दो ओके। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने फौरन जैसे ही आवाज सुनी और देखा कि हाँ सचमुच विपत्ति में है, एक तरफ छोड़ी अपनी प्रतियोगिता, एक तरफ छोड़ा अपना जीतना हारना, और फौरन जाकर के जो है आगे निकल करके और उसको पकड़ लिया। उस जाती हुई खाली गाड़ी जिसमें बच्चा बैठा हुआ था, बताइए कौन जीता? कोई भी कह देगा कि भले ही वो दौड़ में नहीं जीता लेकिन प्राण बचा लिया। कोई भी कह देगा कि भले ही वो दौड़ में नहीं जीता लेकिन प्राण बचा लिया तो जीत गए। भाई ऐसा ही तो उपदेश भगवान का है, और इससे अतिरिक्त क्या है। हम अपने जीवन में भक्ति करते समय ये भावना भाएं कि हमारे द्वारा सब जीवों का जो है उपकार हो, सब जीवों के उपकार में ही हम, उसके हित में ही हम कारण बने, हम उसके अहित में कारण न बने। इतना ही तो उपदेश था भगवान का, वही उनकी वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है। जब तक अहिंसा और दया इत्यादि का जो उपदेश है वो हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम भगवान की भक्ति कितनी भी बाह्य में करते रहें वो भक्ति हमारे लिए उतनी लाभकारी नहीं होगी। भगवान की भक्ति तो उनके जैसे वीतराग बनने के लिए और अपने और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के लिए है। इसी भावना के साथ अपन भक्ति करके